हमारे खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद फराज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पाकिस्तान की कुछ अपडेट्स लेंगे। पिछले एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी की लहर ने लपेट में रखा पाकिस्तान को, और इसके अलावा आज भी कुछ कार्रवाई की गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, और जिसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियां भी हमें लाई हैं। तो फराज से ये पूरा राउंड अप लेते हैं। जी फराज, क्या बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को?
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता सकता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान, जैसे कि आपने भी कहा कि दहशतगर्दी के संगीन वाकयात हुए हैं, जिसमें सबसे नुमाया सूफी बुजुर्ग सिंध के अंदर लाल शाहबाद कलंदर की दरगाह के ऊपर होने वाला खुदकुश हमला था, जिसके अंदर अब तक तकरीबन 90 अफराद जान बहक हो चुके हैं और 50 से ज्यादा सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जख्मी जो है वो इस वक्त जेर इलाज हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं और अपने सामईन के इल्म में ये लाता चलूं कि 12 फरवरी को कराची के अंदर एक निजी टीवी चैनल की जो DSNG है उसके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक कारकुन जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया था, और उसके बाद से दहशतगर्दी की जो नई लहर है उसके वाकयात तेजी के साथ मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर सामने आए हैं। इस हवाले से जो दूसरा बड़ा एक दहशतगर्दी का वाकया था वो लाहौर में पेश आया था, जब फार्मासिस्ट अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे और चेरिंग क्रॉस के ऊपर एक और खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें लगभग तकरीबन 40 से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे। पुलिस के दो आला अफसरान इस खुदकुश हमले का जो है वो निशाना बने थे दीगर पुलिस अहलकारों के साथ। इन तमाम तर वाकयात के बाद वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सूबे के जो दीगर एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने हंगामी दौरे किए थे उन जगहों के, और इस बात का आजम एक बार फिर से दोहराया था कि मुल्क में जो हालिया ये वाकयात हुए हैं और इनके पीछे जो अनासिर कार फरमा है उनको आनी हाथ से हम कुचल देंगे। इसी तनाजुर में आज सुबह यानी बुध की सुबह कराची का एक मदाफाती इलाका है, वहां पे दहशतगर्दों के साथ मुकाबले हुआ और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वालों जो इदारे हैं उनका ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसके अंदर 8 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक जो मारे गए दहशतगर्द हैं उनमें टांग का अमीर भी शामिल है, जिसकी शनाख्त गुल जमान के नाम से की गई है। जैन, मैं आपको और जो हमारे सामईन हैं उनको ये भी बताता चलूं कि मलीर में आज जो वाकया हुआ है उसमें पहली बार लैपटॉप बॉम्ब जो है वो पुलिस को मिला है, और पुलिस के मुताबिक ये लैपटॉप बम बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया गया था। अगर इसका इस्तेमाल होता तो यकीनी तौर पे कराची या जहां पे भी इसको इस्तेमाल किया जाना था वहां पे बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। इस कार्रवाई के अंदर जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए हैं, एक 16 से 17 साल का खुदकुश बमबाज है वो भी बताया जाता है कि वो भी मुमकिन तौर पे एक खुदकुश बमबार हो सकता था, जिसका ताल्लुक यहाँ पे पुलिस ने अभी फौरी जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है उसका ताल्लुक जमातुल एहराज से बताया जाता है। जी जैन
फराज, ये बताइएगा कि ये सारे वाकया जब हुए और आप ही जिन ऑपरेशंस का या कार्रवाइयों का कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो की गई हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और दहशतगर्दों को मारा भी गया है, एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी कुछ दहशतगर्द तलब किए हैं, ये सारे काम उस वक्त नहीं किए गए जब ये भी खबरें आई थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को या इंटेलिजेंस कुछ रिपोर्ट्स थी कि हाँ यहाँ हमले हो सकते हैं, और कल भी जो हमने देखा हमला हुआ है कचहरी पे उसके बारे में भी यही खबरें थी कि हाँ इजाफी नफरी भी इसीलिए तैनात की गई थी कि कुछ इंटेलिजेंस खबरें थी कि कचहरी पे हमला हो सकता है। तो ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होने के बावजूद अगर ये वाकयात हो रहे हैं तो क्या इनकी कोई एक्सप्लेनेशन कोई वजाहत दी गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों या हुकूमत की जानिब से कि ऐसा क्यों हुआ?
जैन, बहुत अहम सवाल है ये बहुत ज्यादा जितना अहम सवाल है उस اتنا ہی مشکل اس کا جواب بھی ہے. خود حکومت کے اداروں سے یا خود جب حکومت سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جب معلومات ہوتی ہیں اور معلومات بڑی حد تک جب آپ آفن کرتے بھی ہیں تو اس کے باوجود کیا وجہ ہوتی ہے کہ اتنی جو ظالمانہ قسم کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا یا دہشت گردوں کو فکر نہیں کیا جا سکتا. تو حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو معلومات جو خفیہ معلومات ان کو دستیاب ہوتی ہیں اس کے تناظر میں بہت سارے دیگر جو دہشت گردی کے منصوبے ہوتے ہیں اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے, ان کو ختم کیا جاتا ہے. جس طرح سے آج یہ ملیر کے اندر ایک انکاؤنٹر ہوا ہے اور آج دہشت گرد اپنے انجام پہنچ گئے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات بہرحال اپنی جگہ موجود رہتی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات مزید ہوئے تو جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو نہ ہونے دیں, یا جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ڈیووس کے اندر سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو اس وقت دہشت گردی کی بے انتہا کاروائیاں ہوتی تھی, لیکن ایک مربوط حکمت عملی اور جامع منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے اندر جو ڈبل فگرز کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی تھیں جس میں ٹارگیٹ کلنگ بھی شامل تھی, جس میں سوسائڈ بامبنگ بھی شامل تھی, اس کو انہوں نے کم کر کے زیرو نہیں لیکن سنگل جو ڈیجٹ ہے اس کی فگر میں وہ لے کے آ گئے تھے. تو ضرورت اب یقینی طور پہ اس بات کی یہاں محسوس کی جا رہی ہے, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دو دنوں کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک دفعہ پھر سے بھارت کو براہ راست نہیں لیکن اس بھارت کو سمجھا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ سب اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جو اسپائی ماسٹر تھا بھارت کا کلبھوشن یادو اس کا بھی دو دنوں سے بہت ذکر رہا ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف کہہ چکے ہیں کہ ہم کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو یقینی طور پہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ اب اس کی حکمت عملی ان تمام تر دہشت گردی کے واقعات کے بعد کیا رہے گی. لیکن چونکہ سیاسی حکومت ہے اس کے اپنے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں, اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ہے. تو یہ بات بہرحال ابھی دیکھنے کی ہوگی کہ جو نواز شریف حکومت ہے تو ان تمام پر واقعات کے بعد کیا ڈیسیزن لیتی ہے, اور اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے, کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سال 2017 جو ہے وہ الیکشن کی تیاریوں کا سال ہے, اور اس سال یعنی اب جبکہ فروری اپنے اختتام کو ہے اگلے 8 ماہ کے اندر سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے شروع ہو جائیں گی. تو نواز شریف حکومت کس طرح سے ان تمام تک چیزوں کو دیکھتی ہے یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جی
ٹھیک, بہت شکریہ فراز ہمارے لیے وقت نکالنے کا.